Now, 1 Corinthians 2,
अब पहली कुरिन्थियों उसके दूसरे अध्याय में
and verse number 12,
उसके बारहवें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं
leads on from what brother George has been teaching,
और हमारे भाई जॉर्ज जिस बात को सिखा रहे थे उसमें से हम आगे बढ़ेंगे
verse 12, 1 Corinthians 2, now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God.
हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है जिससे कि हम उन बातों को जान सके जिन्हें परमेश्वर ने हमें सेंत में दिया है
Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Spirit teacheth.
उन्हीं को हम मनुष्यों के ज्ञान के सिखाए हुए शब्दों में नहीं परंतु आत्मा के द्वारा सिखाए हुए शब्दों में
Comparing spiritual things with spiritual.
अर्थात आत्मिक विचारों को आत्मिक शब्दों से मिलाकर व्यक्त करते हैं
But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned.
परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसके लिए मूर्खतापूर्ण हैं और वह उन्हें समझ नहीं सकता क्योंकि उनकी परख आत्मिक रीति से होती है
These two verses show two very important principles.
ये इन दो पदों में हम बहुत मुख्य सिद्धांतों को पाते हैं
Against verse 13 we could write inspiration.
और पद 13 में हम इस प्रकार से कहते हैं जो प्रेरणा है
Because it is showing us how that we have in the word of God the very words that the Holy Spirit teaches.
क्योंकि हम यहां पर पाते हैं कि परमेश्वर के वचन में वही शब्द पाए गए हैं जो पवित्र आत्मा ने सिखाए हैं
Telling us something about the inspiration of scripture.
ये परमेश्वर के शास्त्र के परमेश्वर से प्रेरित है इस बात को बताती है
You see, there is a liberal modern kind of thought that the Spirit of God revealed to a man a concept and the man then put that concept into his own words.
ऐसा एक खुले विचार वालों की शिक्षा है कि परमेश्वर की आत्मा ने एक तरीका बताया है और मनुष्य उस तरीके का उपयोग अपने जीवन में करता है
So they say the concept is of God, but you can't take it all literally because men put it all into words.
इसलिए वो सिखाते हैं कि ये पवित्र आत्मा या परमेश्वर की ओर से एक भावना है एक विचार है मनुष्य के लिए वो उन विचारों को किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकता है
Paul says that's not the case.
पौलुस कहता है ऐसा नहीं हो सकता
The very words of the original autographs of scripture were breathed by the spirit of god
kyunki parmeshwar ke vachan mein likhe hue har ek shabd pavitra atma ke shwas rahit hai ya prerna se likhi gayi hai
god is communicating his thoughts and his purpose to men
parmeshwar apne vicharon ko apne uddeshyon ko manushya ke paas pahuncha raha hai
is he going to allow anything of fallen man to corrupt what god wants to communicate
kya वो गिरे हुए मनुष्य को अनुमति देगा कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा है उसको कैसे भी प्रस्तुत करे
Of course not.
कभी नहीं
The Spirit of God is going to give to these men the very words which they are to record.
परमेश्वर की आत्मा इन पुरुषों के पास वही शब्द देगा जो परमेश्वर की आत्मा चाहता है कि वो लिखकर हमें दे
So we don't use the words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches.
इसलिए लिखा हुआ है कि परंतु मनुष्यों के ज्ञान के सिखाए हुए शब्दों में नहीं परंतु आत्मा के द्वारा सिखाए हुए शब्दों में आत्मिक विचारों को आत्मिक शब्दों में व्यक्त करते हैं
Comparing spiritual things with spiritual.
यानी कि आत्मिक विचारों को आत्मिक शब्दों से मिलाकर व्यक्त करते हैं
So the word comparing that we have here in my English Bible.
यहां पर अंग्रेजी के बाइबल में जो कंपेयरिंग शब्द लिखा गया है हमारे यहां इसमें मिलाकर कहा गया है
द ग्रीक वर्ड विच इट ट्रांसलेट्स
उसकी यूनानी जो मूल शब्द है
यूज्ड इन द ग्रीक ट्रांसलेशन ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट स्क्रिप्चर्स
और उसका उपयोग उस शब्द का उपयोग यूनानी जो पुराने नियम का जो अनुवाद किया गया उसमें उपयोग किया गया इसी शब्द का
इट इज देयर ट्रांसलेटेड इंटरप्रेटिंग
वहां पर उसकी परिभाषा या उसका अर्थ इस प्रकार से कहा गया इंटरप्रेट या अर्थ को बताना
Paul is teaching us here in verse 13 that the words the Holy Spirit teaches interpret spiritual things by spiritual means
यहां लिखा गया है कि आत्मा के द्वारा सिखाए हुए शब्दों अर्थात आत्मिक विचारों को आत्मिक शब्दों के द्वारा उसका अर्थ व्यक्त किया गया है.
So things which are eternal are put into terms of time.
और जो अनादिकाल के जो विषय हैं अब हमारे लिए समय की सीमा में लाई गई है.
Things which describe the highest glories of the eternal Godhead.
ऐसी बातें जो परमेश्वर के उस महानतम महान महिमा को प्रदर्शित करते थे.
Are put into terms that men can understand.
उन बातों को हम मनुष्य समझ पाए ऐसे शब्दों में यहां पवित्र आत्मा ने प्रस्तुत किया है.
When I was a young boy in the city of Plymouth in England.
जब मैं प्लिमथ में एक छोटा सा लड़का था प्लिमथ में इंग्लैंड में.
It was a naval city.
वो नाविकों का शहर था.
And there were many men in the local assembly who had risen to high rank in the Royal Navy.
और वहां पर हमारी कलीसिया में कई ऐसे भाई लोग थे जो नौसेना में उच्च स्थान में पहुंच चुके थे.
Particularly on a Lord's Day morning sometimes.
और कई बार हम परमेश्वर की आराधना के लिए जब इकट्ठा होते थे.
I was just a small boy.
मैं उस समय एक छोटा सा लड़का था.
I would look around and wonder which of these men is going to stand up today and read from the Word of God.
और मैं वहां पर इस विचार में बैठा रहता था कि इन महान लोगों में से कौन खड़े होकर आज परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करेगा.
I always would hope that it was one particular man.
और मेरी हमेशा इच्छा होती थी कि ये विशेष व्यक्ति आज परमेश्वर के वचन से कुछ बोले.
Because whenever he stood up to read the Word of God.
क्योंकि जब कभी भी वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए खड़े होते थे.
There was a general movement of people in the congregation.
तो ऐसा देखा जाता कि सभा में लोगों में एक हल्की सी हलचल होती थी.
People sat up and they leaned forward. They wanted to hear what this man had to say.
लोग सीधे बैठ जाते थे आगे झुकते थे और सुनना चाहते थे कि अब क्या बातें होने वाली है.
Men who were captains of warships.
और ये थे युद्ध नौसेना के युद्ध पोतों के जो सेनाध्यक्ष थे या कैप्टन थे.
People of high rank in the Admiralty.
ये उस नौसेना में उच्च स्थान पदवी रखने वाले थे.
Believers gathered together.
और ये विश्वासी एक साथ इकट्ठे हुए हैं.
They sat forward with their Bibles in their hands to listen to this man.
वो अपने हाथों में बाइबल को लेकर उस भाई के मुंह से आने वाले वचनों को सुनने के लिए तत्पर.
And men who had been very professional in the face of war.
और कई पुरुष जो युद्ध में बहुत ही श्रेष्ठ थे.
Now had tears coming down their face.
और मैंने देखा उनकी आंखों से जब परमेश्वर का वचन बोला जाता था आंसू बह रहे हैं.
As this little man stood up and he read from the word of God and he expounded the word of God to them.
जब ये भाई साधारण सा भाई खड़े होकर परमेश्वर के वचन को खोलकर परमेश्वर के वचन के अर्थों को समझाता था.
And maybe the following morning.
हो सकता है अगले दिन सुबह.
When they went back to their secular professions.
जब ये बड़े बड़े अधिकारी अपने नौकरी के स्थानों पर जाते थे.
One man would be being saluted because he was in his captain's uniform.
उसको कई लोग सैल्यूट करते होंगे क्योंकि वो कैप्टन के उस वस्त्र को पहने हुए हैं.
And this little man who had been handling the scriptures.
और ये छोटा सा भाई जो वचन को ग्रहण कर रहा था वचन को बांट रहा था.
He went back to sweeping the streets of Plymouth.
वो प्लिमथ के सड़कों को साफ करने के लिए अपने नौकरी में निकल गया था.
That was his job.
वो था उसका नौकरी उसका काम.
What could make men of station and men of dignity willingly hang on the words of a street sweeper?
ऐसी कौन सी बात थी कि इतने उच्च पदवी के पुरुष जागरूकता के साथ उनके सड़कों को साफ करने वाले उस साधारण मनुष्य के मुंह से निकलने वाले शब्दों के लिए व्याग्रता के साथ इंतजार करते थे.
It was because he was a man in touch with God.
क्योंकि वह एक पुरुष था जो परमेश्वर के साथ रिश्ते में जुड़ा हुआ था.
He had an understanding of the word of God because he had a heart that submitted to God.
और वो परमेश्वर के वचन को समझ पाता था क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के सामने झुका हुआ था.
Who was his teacher?
उसको कौन सिखाता था?
The Spirit of God was his teacher.
परमेश्वर की आत्मा उसका शिक्षक था.
Where had he learned these things?
उसने इन सारे बड़े बड़े सत्यों को कहां से सीखा?
He learned them in the local assembly.
उसने स्थानीय कलीसिया में उसे सीखा.
My brother, you will not learn these things. Now I've put my head into the lion's mouth already today. I'm going to do it again.
मेरे प्रिय भाइयों, कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये बातें आप हर जगह सीख नहीं पाएंगे.
But with great respect, you're not going to learn these things in a Bible college.
लेकिन
not in a Bible college.
लेकिन बड़े सम्मान के साथ मैं आदर के साथ बोलना चाहता हूं कि ये बाइबल कॉलेज में ये शिक्षाएं नहीं मिलती.
We're not teaching engineering or medicine.
क्योंकि हम इंजीनियरिंग या मेडिसिन की शिक्षा नहीं दे रहे हैं.
We're not teaching IT skills.
हम यहाँ पर आईटी के जो बातें उन्हें नहीं सिखा
रहे. These are factual things. They don't have to be interpreted. They just have to be imparted.
ये कुछ सिद्धांत है, उनको उनको सिखाने की जरूरत है, उनको बस बांटने की जरूरत है बस.
But that's not how the scriptures of truth are imparted.
लेकिन इस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा को सिखाया नहीं जाता.
When John wrote to those believers round about AD 90,
जब यूहन्ना ने उन विश्वासियों को AD 90 में इन सत्यों को लिखा,
when John was the only person left on the face of the earth who had actually seen the Lord,
और उस समय यूहन्ना ही सिर्फ एकमात्र व्यक्ति रह गया था जिसने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा था.
All the other apostles were dead.
पूरे बाकी सब जो प्रेरित हैं वो गुजर गए.
John was an old man.
और यूहन्ना वृद्ध व्यक्ति हो गया था.
And there were men now rising up who were saying that the Lord Jesus hadn't really come in the flesh.
और कई लोग खड़े हो गए उस जमानों में जो कह रहे थे कि यीशु मसीह शरीर में धारण करके नहीं आए हैं.
They were promoting this idea of gnosis, knowledge.
हाँ, उस कुछ लोग थे जो नॉस्टिज्म या नॉसिस के आइडियाज को, विचारों को लोगों के सामने व्यक्त कर रहे थे.
And you need someone who's been initiated into the mysteries of this faith to reveal them to you.
और इसके लिए आवश्यक है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो इन मर्मों को अपनी आंखों से जिसने देखा हो, जो इन सत्यों को दूसरों के सामने व्यक्त कर सके.
यू नीड अ गुरु, यू नीड अ साधु, यू नीड एन एनलाइटेंड वन.
आज ऐसे बातों को रखने के लिए आपके लिए एक साधु, एक दिव्य प्रकाश को प्राप्त एक व्यक्ति की आवश्यकता है.
जॉन सेड नो.
यूहन्ना ने कहा नहीं.
यू डोंट नीड एनीवन टू टीच यू.
जब लोग ऐसा सिखा रहे थे, यूहन्ना ने कहा नहीं, ऐसे किसी की जरूरत नहीं है.
See the importance of reading in context as our brother has taught us today. The importance of reading in context.
ये जैसे आज भाई ने बताया कि जैसा लिखा हुआ है वास्तविक रूप से जैसा है उस अर्थ में उसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों है.
When John said you don't need that any man should teach you.
जब यूहन्ना ने कहा कि किसी और व्यक्ति के द्वारा शिक्षा की आवश्यकता नहीं है.
He wasn't talking about the kind of things we're doing today.
और वो हम जैसे बातें कर रहे हैं ऐसे बातों के बारे में नहीं कह रहा था.
John was explaining you don't need any man to interpret to you divine truth.
वो यूहन्ना इस सत्य को बता रहा था कि तुम्हें किसी दूसरे मनुष्य की आवश्यकता नहीं है कि आत्मिक सत्यों को तुमको उसके अर्थों को समझा के सिखाए.
You have an unction from the Holy One.
क्योंकि तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा की ओर से विशेष अनुग्रह प्राप्त है.
You have the Spirit of God dwelling within you.
तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा निवास कर रहा है.
And the Spirit of God will take from the Word of God what you need to serve God.
पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन से आपकी आवश्यकता के अनुसार लेकर आपके समस्याओं का समाधान कर देगा.
डोंट ट्राई एंड हैव माई मिनिस्ट्री. डोंट ट्राई एंड टेक माई मिनिस्ट्री.
मेरी जो सेवकाई उसको लेने की जरूरत नहीं.
Or any other brother's ministry.
या किसी भाई और भाई ने क्या कहा उसको लेने की जरूरत नहीं.
God has set the members in the body according as it hath pleased him.
परमेश्वर ने शरीर के अंदर अंगों को जैसा वो चाहता है उस स्थान पर नियुक्त किया है.
सो द वंडरफुल थिंग इज दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड विल टेक फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड व्हाट यू नीड टू सर्व द लॉर्ड.
इसलिए सबसे अद्भुत बात यह है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन से आपके लिए क्या आवश्यक है उसको लेकर आपको देगा ताकि आप परमेश्वर की सेवकाई कर पाए.
सो नाउ इफ वी वॉन्ट टू get a better understanding of our Bibles.
इसलिए अगर हम पवित्र शास्त्र के अर्थों को और अधिक समझना चाहते हैं,
we do have the option of going to maybe a new translation.
हो सकता है हम एक नए अनुवाद की ओर जाएं.
Or the option of going to a commentary.
या हम कोई commentary देखें जहां पर विस्तृत रूप से उसका अर्थ समझाया गया.
But the moment we do that, we are actually taking ourselves one place further away from where the truth really lies.
जब भी हम ऐसे बातों की सहायता लेते हैं, वास्तविक रूप से सत्य जहां पर है उससे एक कदम और दूर हम हो गए हैं.
These things are tremendously helpful. Don't get me wrong. We like these things.
हाँ, आप मुझे गलत ना समझे, ये सारे सहायक वचन के सीखने के सहायक के जो बातें हैं वो अच्छे हैं.
But the best thing to do is to go back and discover what those original words mean.
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है मूल शब्द जहां पर लिखे गए हैं वहां पर जाकर उसके अर्थों को समझने की कोशिश हम करें.
The Bible was not written in English.
और ये पवित्र शास्त्र बाइबल अंग्रेजी में नहीं लिखा गया था.
Not in Hindi, not in Marathi, not in Malayali.
No, ना ये हिंदी में या मलयालम या मराठी में लिखा गया था.
The New Testament was written in Greek.
ये नया नियम जो है यूनानी भाषा में लिखा गया था.
That was a divine choice.
और वो वास्तविक सत्य वहां पर लिखा.
And the Spirit of God took words from that language to convey the meaning that He divinely wanted to bring to men.
और परमेश्वर की आत्मा ने उस भाषा में से शब्दों को लिया ताकि अपने उन आत्मिक बातों को हम तक पहुंचा सके.
One of those words that He used was the word which we now have interpreted into English, translated into English as dispensation.
और पवित्र आत्मा ने एक शब्द जिसका यूनानी भाषा में से उपयोग किया था उसको हम आज अंग्रेजी में dispensation कहते हैं या युगों का जो अंतर है वो कहते हैं.
So when you want to know what a dispensation is, don't go first to say a Bible dictionary.
जब हम यह शब्द dispensation या युगों का जो अंतर इसको समझना चाहते हैं कोई Bible dictionary की में ढूंढने की कोशिश ना करें.
Go to a book that will enable you to see how the Spirit of God has used that word elsewhere in the Bible. Go to a book that will explain to you, show you where the Spirit of God has used that word in Scripture.
हम वास्तविक रूप से वचन में पा सकते हैं कि यह शब्द को वचन में कहां कहां पवित्र आत्मा ने लिख कर रखा है.
I thank God that from my earliest years, brethren encouraged me to spend my study time mostly looking at the words of Scripture.
जब मैं जवान था तो परमेश्वर के मेरे कलीसिया के अगुओं ने मेरे मुझे प्रोत्साहित किया कि परमेश्वर के वचन में लिखे गए शब्दों के अर्थों को समझने की कोशिश मैं करूं.
Now if I had to dispose of all my books,
अगर मुझे मेरे सारे पुस्तकों को बेच देना पड़ता,
and I could only keep my Bible and one other book,
मेरे बाइबल के साथ एक और बुक को मैं अपने पास रखना चाहता हूं.
If you had that choice, what would you keep?
अगर आपके पास ऐसा एक चुनाव दिया जाएगा तो आप कौन सी पुस्तक को रखेंगे?
Which is the one book in your library other than the Bible that you would never want to get rid of?
आपके लाइब्रेरी में ऐसी कौन सी पुस्तक है आपके बाइबल के अलावा जिसको आप कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे?
Maybe it's a commentary because you're so dependent upon it now.
हो सकता है वो एक कमेंट्री होगी जिस पर आप बहुत निर्भर हैं.
If you are dependent upon it, make that the first one you throw away.
अगर आप उस पर बहुत निर्भर हैं आपकी कमेंट्री पर, मैं आपसे विनती करता हूं आप उसे तुरंत फेंक दें.
No disrespect to the commentary and the man who's put so much work into it.
मैं बड़े आदर के साथ सम्मान के साथ ये कह रहा हूं, मेरा कोई सम्मान ना हो ऐसी कोई भावना नहीं उस व्यक्ति के प्रति जिसने लिखा है.
But now instead of just being a help to you, it's become the crutch upon which you are leaning.
अब देखिए आपकी सहायता करने के बजाय आज वो आपको खड़े रखने के लिए एक साधन बन गया है, वह साखी बन गया है.
I'll tell you the book I will not throw away.
मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी कौन सी दूसरी पुस्तक है जिसे मैं फेंकूंगा नहीं.
Its title is The Englishman's Greek Concordance of New Testament Words.
उसका टाइटल Englishman's Greek Concordance of New Testament Words.
Yeah. Now, the good news is, my dear brethren, you don't need to be an Englishman to have one.
और इसमें जो अच्छी बात जो शुभ समाचार है कि इसको आप अपने पास पाने के लिए आपको एक इंग्लिशमैन या अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है.
It was simply called that because the man who compiled it, his name was Wigram, that was his family name. Wigram.
Okay. Yes. जिस व्यक्ति ने इसको इन बातों को एक साथ इकट्ठा किया था उनका नाम विग्राम था.
His first name was George.
उनका पहला नाम जॉर्ज था.
His next name Vicesimus.
उनका दूसरा नाम था Vicesimus.
It's the Latin word for 20th.
लैटिन भाषा में 20th या 20वां उस वो जो 20 कहते हैं उसका उसी नाम से उसका नाम आया था.
He was the 20th child of the family.
क्योंकि वो उनके परिवार का 20वां संतान था.
And Mr. Wigram went on to be a great man of God.
और भाई विग्रम परमेश्वर के एक महान संत बन गए.
Now what he did was very helpful.
और उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही सहायक रहा है.
He took all the Greek words in the New Testament and put them in order.
उन्होंने नए नियम में जितने भी यूनानी शब्द हैं उनको क्रम से लिखा.
एंड अगेंस्ट ईच ग्रीक वर्ड
और हर एक यूनानी शब्द के सामने
ही लिस्टेड ऑल द प्लेसेस वेयर इट वाज यूज्ड एंड ऑल द वेज इन व्हिच इट हैड बीन ट्रांसलेटेड.
और उन्होंने उसके सामने ये यूनानी शब्द कहां कहां पाए गए हैं ये भी लिखा. इतना ही नहीं इन विभिन्न स्थानों में इनके अर्थ क्या होते हैं वो भी उन्होंने लिख दिया.
Sometimes the same Greek word has maybe 12 different English translations.
और कई बार हम पाते हैं कि एक ही यूनानी शब्द का आपको कम से कम 12 अनुवाद अंग्रेजी में मिलेंगे.
We would never know by studying the English text that those words were the same in the original.
और जब हम English Bible को पढ़ते हैं तो हमें कभी समझ में नहीं आएगा कि English Bible में ये 12 जगह जो बातें कही गई हैं वो एक ही यूनानी शब्द है.
Now the wonderful thing is, it's the Englishman's Greek concordance.
और इसलिए उसका नाम ऐसा Englishman's Greek New Testament concordance पड़ा.
I think he called it that because he knows that Englishmen never learn anyone else's language.
उन्होंने इसलिए उसका नाम ऐसा इसलिए रखा होगा क्योंकि उनको मालूम था कि ये अंग्रेज जो हैं वो किसी और की भाषा पढ़ने में रुचि नहीं रखते सीखने में.
We have a funny attitude to language, the English.
हम जो अंग्रेज हैं हमें दूसरे जो भाषा उनके प्रति एक विशेष भावना है.
When first the European government, parliament came into being,
जब यूरोपियन सांसद सबसे पहली बार जब आए थे या बैठे थे बनाई गई थी.
A lot of discussion. What was going to be the language, the common language of Europe?
तब उस समय एक बहुत बड़ा वाद विवाद था कि पूरे यूरोप में जो सब लोगों के लिए मान्य ऐसी कौन सी भाषा को हम मूल भाषा के रूप में रख सकते हैं.
And the English ambassador was getting very, very irritated about the whole thing.
और जो इंग्लैंड के राजदूत हैं वो बड़े परेशान हो रहे थे इन बातों को सुनकर.
He was having lunch one day with the German ambassador and the French ambassador.
एक दिन वो फ्रेंच जो राजदूत हैं और जर्मन राजदूत हैं उनके साथ वो भोजन कर रहे थे.
He said, look, it's like this.
उन्होंने इस प्रकार से जो इंग्लैंड के राजदूत हैं उन्होंने इस प्रकार से कहा देखो ऐसा है.
And he picked up his knife.
और उसने अपनी छुरी को उठाया.
He said, now you French, you call this un couteau.
अब उन्होंने कहा कि देखो ये छुरी को देखो अब तुम जो फ्रांस के रहने वाले हैं इसको उनको तो कहते हैं.
And you Germans, you call it ein Messer.
और आप जो जर्मनी के रहने वाले उसको ein Messer कहते हैं.
We British,
हम जो अंग्रेज हैं,
we call it a knife and that's what it is.
हम उसको नाइफ कहते हैं छुरी कहते हैं बस वही है.
You see, that's why Mr. Wigram wrote an Englishman's
इसीलिए भाई, concordance. भाई विग्रम ने Englishman's concordance करके लिखा.
It simply means that if you are a person who does not know Greek,
उसका अर्थ इतना है कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यूनानी भाषा नहीं जानते,
through this excellent book you have access to the words that the Holy Spirit teaches.
इस पुस्तक के द्वारा आप पवित्र आत्मा ने जिस मूल भाषा का उपयोग किया अर्थों को समझाने के लिए उसके और आप करीब हो जाएंगे आप समझ पाएंगे.
एंड सो द बेस्ट कमेंट्री रियली ऑन स्क्रिप्चर इज द बाइबल.
और पवित्र शास्त्र को स्पष्ट रूप से बताने के लिए उसके अर्थ समझाने के लिए जो कमेंट्री हमारे पास है वो पवित्र शास्त्र ही है.
We compare spiritual things with spiritual.
क्योंकि हम आत्मिक विचारों को आत्मिक शब्दों के साथ तुलना कर सकते हैं.
And as we are looking for the meaning of a text, we know that it must be in harmony with the meaning of everything else in the Bible.
और जब हम किसी भाग के वास्तविक अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं तो दूसरी बात रहती है कि वो ऐसे दूसरे जो अर्थ उसी शब्द के दूसरे अर्थ बाकी भागों में जो हैं उनके साथ मेल खाना चाहिए.
एंड व्हेन वी आर हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड टॉट एंड मेन आर स्टैंडिंग बिफोर अस एंड एक्सपाउंडिंग द वर्ड ऑफ गॉड.
और जब परमेश्वर का वचन सिखा जाता है परमेश्वर के दास खड़े होकर उसका अर्थ को समझा रहे हैं.
Two things should mark us.
और दो बातें हमारे ध्यान में आनी चाहिए.
That marked the Bereans in Acts chapter 17.
जो बरिया के विश्वासियों ने जिस बात पर ध्यान दिया.
They first received the word with gladness.
पहली बात उन्होंने आनंद के साथ वचन को स्वीकार किया.
What they received was the word.
उन्होंने क्या स्वीकार किया? वचन को स्वीकार किया.
And having received it, they then reviewed it. That was the second thing.
वचन को स्वीकार करने के बाद उन्होंने उस पर विचार किया.
They received it with much gladness.
उन्होंने बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया.
And then they searched the scriptures daily to see if these things were so.
और उन्होंने रोज वचन को खोज किया कि वो ऐसा ही है या नहीं.
So things have been and will be taught during this week by different brethren. And when we hear them, they may be new. They may be different from what we believe.
अब एक सप्ताह हमारे पास है. कई भाई परमेश्वर के वचन से हमें बताएंगे. वो कई बातों को हमारे सामने रखेंगे. शायद कुछ बातें हमारे लिए नहीं होगी.
there will be an initial temptation just to immediately reject it.
ऐसा हो सकता है जब इन नई बातों को हम सुनेंगे तो हमारे मन में ऐसी एक परीक्षा की घड़ी आएगी कि नहीं नहीं ये बिल्कुल ध्यान देने योग्य नहीं है.
Because although we are from different countries and cultures, we are all just men. We might be from different countries and cultures, but we're just men.
हाँ, हम कई देशों से कई संस्कृतियों से आएंगे लेकिन हम सब परमेश्वर के लोग हैं.
Nobody likes to be told that they're wrong.
कोई ये नहीं चाहता कि हम किसी से कहे कि आप गलत हैं.
There's an element of pride in us all.
हम में से हर एक के अंदर गर्व के कुछ कण हैं.
But what we must do if the teaching of the word of God cuts across things that we have believed up until now.
ऐसा हो रहा है कि जब परमेश्वर का वचन सिखाया जा रहा है तो कुछ सत्य शायद हम जिन बातों को जैसे समझते हैं उसको काट कर या भेद कर कुछ नई बातों को ला रही है.
We must first say, now, has this been faithful to the word of God?
So, सबसे पहली बात जो हमें कहना है कि जो कही गई है ये परमेश्वर के वचन के आधार पर विश्वास योग्य बातें हैं.
And then we review it and we say, is it in harmony with the rest of the word of God?
उसके बाद हम उन बातों पर विचार करें और देखें कि परमेश्वर के वचन के अन्य भागों के साथ क्या ये मेल खाती है.
And we may well find that scripture supports both views.
और हम शायद पाएंगे कि पवित्र शास्त्र में इन दोनों बातों को को प्रेरणा करते हुए हम पाएंगे.
It could be this or it could be that.
हो सकता है ये भी सत्य हो वो भी सत्य हो.
But there are certain issues which are fundamental to the word of God and they will always have but one interpretation.
लेकिन कुछ बातें मूल सत्य हैं और उनकी एक ही परिभाषा या एक ही विवरण या अर्थ हो सकता है.
Now our word dispensation,
और अब जो शब्द हम देख रहे हैं dispensation जो है,
it comes, well it's the English translation of a Greek word which is made up of two words.
ये अंग्रेजी जो शब्द हैं वो दो यूनानी शब्दों से मिलकर बनाया गया है.
The two Greek words are the word oikos, which means house.
पहला है यूनानी शब्द है oikos, जिसका मतलब है,
and nomos, which means law.
और nomos, जिसका अर्थ है व्यवस्था.
Oikonomos. Or its derivative, oikonomia.
या ऐसा भी कह सकती है ओइकोनोमिया.
टू ग्रीक वर्ड्स,
दो यूनानी शब्द एक साथ जुड़े हुए.
अ लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ देम वुड बी द लॉ ऑफ द हाउस.
और उसका जो मूल जो अर्थ होना चाहिए वो है घर के अंदर जो व्यवस्था है.
इट इज स्पीकिंग अबाउट ए फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन.
वो साधारण बातों को चलाने के जो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी एक व्यवस्था के बारे में बताया गया है.
यू हैव रूल्स इन योर हाउस.
आपके घर में कुछ नियम कायदे कानून हैं.
थिंग्स विच यू परमिट योर फैमिली टू डू और नॉट टू डू,
जो आप चाहते हैं कि आपके परिवार में जिसका अनुसरण किया जाए.
दे माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द rules in my house.
और ये नियम कायदे कानून जो आपके घर में मेरे घर में जो चलते हैं उससे अलग होंगे.
That's fine. You're the head of your house, I'm the head of mine.
ये कोई बात नहीं, आप अपने घर के मुखिया हैं, मैं अपने घर का मुखिया हूँ.
But every one of us who are fathers and parents, we have an oikonomos, we have a law of the house.
लेकिन हम में से हर एक जो पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, हमारे घर में एक oikonomos है या घर का नियम है.
I would be very surprised if it was actually a list of regulations.
और मुझे आश्चर्य होगा अगर ये एक लिस्ट होगा जिसमें बहुत सारे नियम कायदे कानून लिखे गए हैं.
It is rather the atmosphere of the house that comes from the character of the man of the house.
उससे बढ़कर ये एक व्यवस्था है जो घर के जो मुखिया है उनके चरित्र के द्वारा घर में बना हुआ नियम.
Is it a caring home?
एक सबके बारे में चिंता करने वाला घर.
Is there a spirit of love there?
क्या उस घर में प्रेम की भावना है?
Is it a violent home?
क्या वहां पर बहुत क्रोध और अत्याचार होता है?
Is it a home of harsh words?
क्या एक ऐसा घर है जहां पर कठोर शब्द मुंह से लोगों के निकल रहे हैं?
Whatever the flavor is, that's the oikonomos. That is the law of that house.
इसका ये मतलब हुआ कि वहां पर जो माहौल है वही वो घर का नियम है.
It comes from the one who heads it.
वो उस व्यक्ति के जीवन से आता है जो उस घर का मुखिया है.
एंड समटाइम्स द लॉ ऑफ द हाउस चेंजेस.
और कई बार ऐसा भी होता है कि जो घर का जो नियम है, व्यवस्था है, वो बदल भी जाती है.
When we were first blessed with our children, they're grown up now, they're in their 30s. But when they were just small babies,
जब हमारे बच्चे छोटे थे, अभी वो बड़े हो गए, 30 साल के ऊपर के हैं,
the house was run in a certain way.
तब घर एक विशेष विधि से चलाई जाती थी.
Usually around the babies.
और विशेष करके जब वो बच्चे थे,
they needed to be fed at certain times.
उनको एक विशेष समय पर भोजन खिलाया जाना था.
The concentration of the house was upon the care of these infants.
और घर का माहौल ऐसा था कि ये जो छोटे बच्चे हैं, उन पर सबका ध्यान था.
A strict timetable.
और एक timetable के अनुसार.
As they grew up, they went to school.
जैसे ये बच्चे बड़े होने लगे, अब वो स्कूल जाने लगे.
Almost unconsciously, the law of the house changed now.
और पता नहीं अचानक घर के जो नियम है वो बदल गए.
Because now we've got to think about the kids at school every day, but there are certain months when they're not at school. There's holiday.
अब ऐसा भी है कि कुछ महीने हैं जब बच्चे स्कूल में रहते हैं, लेकिन कुछ महीने ऐसे भी हैं जब बच्चे घर पे रहते हैं.
That has happened to all our houses, hasn't it?
ये हम सब के घर में होता है.
Then they go away from school.
जब वो स्कूल से दूर रहते हैं.
My own children are married, they have their children.
बच्चों की शादी हो गई, अब उनके भी बच्चे हैं.
So now we have babies back in the house again.
अब फिर से घर में छोटे बच्चे आ गए हैं.
And the law of the house has changed again.
फिर से घर का नियम बदल गया, व्यवस्था बदल गई है.
It's still my house.
ये अभी भी मेरा घर है.
I'm head of the house.
मैं घर का मुखिया हूं.
That hasn't changed.
अब वो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है.
But unconsciously, my purpose is being worked out by changes in the law of the house.
लेकिन मेरे जो उद्देश्य वो पूरे हो रहे हैं. घर की व्यवस्थाएं भी बदल रही है. इन सब के द्वारा सब मिलकर काम हो रहा है.
Take away the words law of the house.
अब ऐसा देख लीजिए, इन शब्दों को हमें निकाल दे, घर के नियम.
Substitute the word dispensation.
और उसके जगह आप डिस्पेंसेशन शब्द डाल दीजिए.
There are different dispensations in the history of my household.
हमारे मेरे परिवार के इतिहास में ऐसे कई कई समय आए हैं.
Different ways of working.
कई कई समय जहां अलग अलग विधियों में काम हुआ है.
And it has all been over 35 years with a view to raising a family for God and seeing that family begin to raise their own children for God.
और 35 सालों में कई ऐसे छोटे छोटे युग या समय आए हैं जहां पर एक परिवार परमेश्वर के लिए खड़ा हो सके.
What is God doing?
परमेश्वर क्या कर रहा है?
In time.
समय में.
What is his purpose?
इन समय के अंदर परमेश्वर क्या कर रहा है?
It's to ultimately glorify Christ before the whole of his creation.
वो यह है कि परमेश्वर अब पूर्ण रूप से अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा सारी सृष्टि के सामने करना चाहता है.
And for a certain period of time, God has had one particular law of the house.
और एक समय के लिए, एक युग के लिए परमेश्वर के एक विशेष घर का नियम था.
Then, as God's purpose progressed, he changed it.
जैसे परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होता गया, नियम भी बदलता गया.
He didn't change.
वह बदला नहीं.
His purpose didn't change.
उसके उद्देश्य भी बदले नहीं.
But his form of administration changed.
लेकिन उसकी जो व्यवस्था का क्रम है उसमें बदलाव आ गया.
And then he would change it again.
और वो उसे फिर बदला.
Does this make God double-minded?
इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर दो मन वाला है?
Of course not.
बिल्कुल नहीं.
It is the evidence of an intelligent, loving God who is working out all things according to the counsel of his own will.
हाँ, ये एक प्रमाण है कि सर्वज्ञानी परमेश्वर अपने 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 उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने ज्ञान के अनुसार बातों को क्रम में करता आ रहा है विभिन्न युगों में.
And just as different events come into our homes,
और जिस प्रकार जैसे ये समय बदलता जाता है, कई घटनाएं हमारे घरों में घटती है.
मैरिज,
विवाह,
बेबीज,
बच्चे हो रहे हैं,
स्कूल
जा रहे हैं,
सिकनेस समटाइम्स,
बीमारियां आ रही है,
देन यूनिवर्सिटी,
और फिर यूनिवर्सिटी में बनने जा रहे हैं,
देन द मैरिज ऑफ आवर यंगस्टर्स,
फिर हमारे पोतों के विवाह हो रहे हैं.
वी आर चेंजिंग आवर डिस्पेंसेशंस इन आवर ओन होम्स एंड वी आर हार्डली अवेयर दैट वी आर डूइंग इट.
हमारे घरों में ऐसी व्यवस्थाओं का, युगों का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है.
But we're in control. We are in control.
लेकिन हम सारी बातों पर नियंत्रण रखे हुए.
And every one of those dispensations is reflecting our character.
और ये सारे घर के नियम जब बदल रहे हैं, हमारा चरित्र उसमें दिखाई दे रहा है.
And sometimes there were things that I would not have allowed in the home when I had infants there.
कई बार ऐसे हैं कि जब घर में छोटे बच्चे हैं, तब कई बातें हैं जिसकी मैं अनुमति नहीं देता.
That we were ready and happy to allow when they had grown older.
लेकिन उन बातों को करने की अनुमति तब हम देने के लिए तैयार हैं जब ये बड़े हो गए.
What kind of things?
कैसे कैसे काम?
Well, you imagine we have a cupboard. It has two doors.
ऐसा सोच लीजिए हमारा एक अलमारा है जिसके दो दरवाजे हैं.
In the cupboard, sharp knives.
उस अलमारा के अंदर धार वाले छुरी रखे हुए हैं, चाकू रखे हुए हैं.
Not kuto, not messer, knives.
छुरी रखे हुए हैं.
That's what they are. In there are knives.
और इस अलमारी के अंदर छुरी रखे हुए हैं.
Now, I have a granddaughter who is nearly 7 years old.
Seven.
Mm-hmm.
एक पोती है जो 7 बरस की है.
I have another little granddaughter. She is 15 months old. She's just starting to walk.
एक और पोती है जो सिर्फ 15 महीने की बस चलना शुरू कर रही है.
When the first girl was small, 15 months old.
जब बड़ी वाली जब छोटी थी.
My wife would tie string around the two handles. So that the doors could not be pulled open by a little baby starting to walk.
मेरी पत्नी जो है उन handles पे को रस्सियों से बांधती थी ताकि बच्ची उसको खोले नहीं.
She doesn't know about the danger of sharp knives.
क्योंकि वो बच्ची वो उस धार वाले चाकू या छुरी के खतरों को नहीं जानती.
But I do.
लेकिन मैं जानता हूँ.
My wife does.
मेरी पत्नी जानती है.
So now we did things to prevent the child hurting itself.
इसलिए हमने ऐसे कुछ विधियों को किया, कार्यों को किया जिससे बच्ची अपने आप को उसके घाव ना लग जाए.
Then that first granddaughter grew. She's now 7 years old nearly.
जब पहली जो पोती बड़ी हो गई, अब वो 7 बरस की है.
She doesn't need the string on the door anymore.
अब उसके लिए जरूरत नहीं है. वो जब घर पे है तो वहां पर रस्सी बांधने की जरूरत नहीं है.
So we haven't had string on the door now for 2 or 3 years.
अब
it hasn't been there for 2 or 3 years.
अब 2-3 बरस हो गए कि वो धागे लगे हुए नहीं है उस पे दरवाजों पे.
But now the second girl is starting to walk.
लेकिन अब वो जो छोटी गुड़िया है वो चलने लग गई है.
So the string is back on.
फिर वापस वो रस्सी उन दरवाजों के हैंडल पे आ
गई. You see the ways in which the law of the house changes.
देखिए धीरे धीरे घर के कुछ व्यवस्था नियम बदल रहे हैं.
Paul writes to the Galatians and in chapter 4 he speaks about the nation of Israel being under tutors and governors.
और गलतियों को लिखते हुए प्रेरित पौलुस व्यवस्थापकों और राज्यपालों के अधीन कैसे यहूदी थे ऐसा लिखता है.
What's the word governor?
वहां पर जो राज्यपाल है.
Oikonomos.
Oikonomos.
It is the one who determines the law of the house.
वो व्यक्ति है जो घर के नियम को पूरा करेगा या पालन करने के लिए बाध्य
करेगा. So God brought his earthly people through different dispensations. He dealt with them in different ways at different times.
इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों से विभिन्न समयों में विभिन्न रूप से उनके साथ काम किया.
Now, as far as prophecy is concerned,
और जहां तक भविष्यवाणी का संबंध है,
we will never ever ever understand biblical prophecy unless we understand this one very important thing I'm going to say.
और जब तब तक हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में बताए गए भविष्यवाणियों को कभी नहीं समझेंगे जब तक जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं हम उसको अच्छे से ना समझें.
In relation to salvation, in relation to the gospel, there are only two kinds of people on the face of this earth.
सुसमाचार के संबंध में अगर हम देखें तो दो प्रकार के लोग इस पृथ्वी पर अभी हैं.
You are either saved or you are lost.
या तो आप उद्धार पाए हुए हैं या तो आप खोए हुए हैं.
There is no other group.
और इसके अलावा कोई दूसरा एक समूह नहीं है.
That's in relation to the gospel.
सुसमाचार के संबंध में हम देखें तो ये दो ही समूह हैं.
But now God has an administrative purpose that he is working out over time.
लेकिन अगर हम देखें तो परमेश्वर का एक व्यवस्था का एक उद्देश्य जो वो विभिन्न समयों में करता
है. इट इज अ किंगडम.
वो एक राज्य है.
इट्स अ किंगडम.
वो एक राज्य है.
टाइम बिगैन एंड द किंगडम बिगैन.
समय का आरंभ हुआ, एक राज्य का आरंभ हुआ.
हाउ डू आई नो दैट?
कैसे मुझे ये मालूम है?
मैथ्यू चैप्टर 13,
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13,
मैथ्यू चैप्टर 25,
और मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय,
द किंगडम प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड,
जगत की उत्पत्ति के पहले से तैयार किया गया परमेश्वर का राज्य,
इट्स गॉड्स एडमिनिस्ट्रेशन,
ये परमेश्वर के व्यवस्था के बारे में हमें बताती है।
अ किंगडम मस्ट हैव अ किंग,
एक राज्य हो तो उसका एक राजा होना आवश्यक है।
अ किंग मस्ट हैव एन एडमिनिस्ट्रेशन,
और उस राजा के नियम कायदे कानून चलने चाहिए,
सो दैट द किंगडम कैन बी गवर्नड एंड दैट इट माइट फंक्शन एंड प्रॉस्पर,
ताकि राज्य अच्छे रूप से चल पाए, उसका संचालन हो सके।
दैट्स व्हाट गॉड बिगन व्हेन ही क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ,
यही बात को परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि के साथ शुरू की थी।
सी हिज पर्पस फॉर द चर्च इज डिफरेंट,
उसकी कलीसिया के से जो उद्देश्य है वो अलग है।
Ephesians chapter 1, when were you and I as believers, when were we chosen in Christ?
इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के अनुसार हम में से हर एक व्यक्ति मसीह यीशु में कब बन गए?
It was before the foundation of the world.
हम पढ़ते हैं कि सृष्टि के उत्पत्ति नींव रखे जाने के पहले।
There's something eternal, something spiritual, something heavenly about the church. It was before the foundation of the world.
कलीसिया के बारे में कुछ आत्मिक सत्य हैं, कुछ स्वर्गीय सत्य हैं, कुछ अनादिकाल के सत्य हैं।
But the kingdom,
लेकिन राज्य के बारे में जो विचार करते हैं,
from the foundation of the world,
वो जगत की उत्पत्ति के समय से।
That means that God's kingdom program did not start until the heavens and the earth were made.
इसका ये अर्थ हुआ, परमेश्वर का राज्य के जो विधियां हैं वो जब तक आकाश और पृथ्वी की सृष्टि नहीं हुई तब तक नहीं थी, या उसके बाद चालू हुई।
We're happy with that. That's what the Bible teaches.
ये पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है।
We come back to the point that very clearly has created some conversation today. When did Lucifer fall?
आज जो विचार मैंने सुबह व्यक्त किया था उसके बारे में कि लूसीफर कब गिर गया।
Now one of the things that we know about the sinful ambition of Lucifer,
लूसीफर के जो पाप में इच्छा के बारे में एक बात जो हमारे सामने स्पष्ट है,
one of the things we know in Isaiah 14 is that he said,
यशायाह नबी की पुस्तक उसके 14वें अध्याय में उसने इस प्रकार से कहा था,
I will ascend above the sides of the north,
मैं उत्तर की धुरियों तक ऊंचा उठूंगा।
What does that mean?
उसका क्या अर्थ हुआ?
Well, the expression is only ever used once again in Scripture.
और ये जो बात है, एक और बार ये जो शब्द है, एक और बार पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं।
And it's in Psalm 48.
और वो हम भजन उसके 48वें अध्याय में पाते हैं।
And it's in connection with Zion, the city of the great king.
और वो परमेश्वर का नगर सियोन के बारे में है।
Beautiful for situation.
और उसके बारे में कहा गया है कि ऊंचाई में सुंदर।
In the sides of the north.
Sudur uttar mein sthit.
There it is. It's linked with Zion. It's linked with the capital of the millennial kingdom.
Aur wo jo hazar varsh ka jo rajy hai uske us rajy ke sambandh mein likha gaya sudur uttar mein sthit.
So Zion is the center of God's purposed kingdom.
इसलिए सियोन जो है परमेश्वर का नियुक्त किया गया राज्य का मुख्य भाग होगा।
It's in the sides of the north,
वो सुदूर उत्तर में स्थित है।
And Lucifer said, I will ascend into the sides of the north. I'm going to have that kingdom.
और लूसीफर ने कहा कि उस सुदूर उत्तर भाग में, उस शीर्ष स्थान में मैं पहुंचूंगा।
But when did the kingdom begin?
इसलिए राज्य के आरंभ कब हुआ?
The foundation of the world.
जब जगत का नींव रखा गया था।
So if the kingdom only began at the foundation of the world,
इसलिए अगर जगत का नींव जब राज्य की स्थापना जगत के नींव जब रखा गया तब हुआ है,
and Lucifer desired it,
और अगर लूसीफर ने उसको प्राप्त करने हासिल करने की इच्छा रखी है,
then his fall must be subsequent to Genesis chapter 1.
तो निश्चित रूप से उसका गिरना उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के साथ होना चाहिए।
You see my thinking on that?
आपको समझ में आ गया होगा मेरा विचार जो इस संदर्भ में है।
Now brethren, what we do, please, what we do is we are manly about this. We behave as men.
जब हम इसके बारे में विचार करते हैं, हम एक मनुष्य के समान इसके बारे में विचार करते हैं।
And if you think I'm wrong,
अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत है,
not just about this, about anything,
या इसी बात के बारे में नहीं, कोई भी दूसरे बात के बारे में,
then your duty,
तब आपकी जिम्मेदारी है,
योर ड्यूटी,
आपकी ये जिम्मेदारी है,
इज टू कम टू मी एंड से ब्रदर,
कि आप मेरे पास आए और कहे भाई,
कुड वी जस्ट टॉक अबाउट दिस बिकॉज आई थिंक यू आर रॉन्ग,
क्या हम इसके बारे में जरा विचार कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है ये गलत है आपने जो बताया.
एंड इफ आई एम रॉन्ग व्हेन आई थिंक आई एम राइट, दैट्स वेरी डेंजरस बिकॉज आई टीच अ लॉट ऑफ बिलीवर्स इन लॉट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड.
और जब ये ऐसा है कि मैं गलत हूं और मैं उन बातों को दूसरों को सिखा रहा हूं, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये सत्य समझकर मैं बहुत से लोगों को सिखा रहा हूं.
सो नाउ यू मस्ट कम एंड शो मी व्हाई आई एम रॉन्ग.
इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि अगर आपको लगता है गलत है, आप मेरे पास आए और ये मुझे बताए कि भाई ये गलत है.
बट यू नीड टू डू इट विद योर बाइबल ओपन.
लेकिन आप अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को लेकर आइए मेरे पास और खोलकर मुझसे बात करें.
I'm afraid, I'm sorry, you won't convince me that I'm wrong if it's just contrary to what you've always been taught. If we differ, if that's the only difference, you've been taught one thing, I've been taught another. If that's the only difference, that's not good enough.
अगर आप जो विचार रखते हैं, मैं जो विचार रखता हूं, उसमें अलगाव है, तो वो काफी नहीं है, वो अच्छा नहीं है.
We have to compare scripture with scripture.
क्योंकि हमें पवित्र शास्त्र के वचन को उसके शब्दों के साथ तुलना करना आवश्यक है, विचारों को.
And many times in my history have brethren and sisters come to me at different times.
मेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ कि भाई और बहन मेरे पास आए हैं.
They said, brother, you taught this.
भाई आपने ऐसा सिखाया.
What about this verse?
ये पद का क्या अर्थ है इसके साथ?
And we've had to go away, and it's not a nice feeling. You feel absolutely broken to think that you have been teaching things maybe for some time and now some dear saint has pointed out to you that what you taught was wrong.
और उस समय actually वास्तविक रूप से हम एक तरह से टूट जाते हैं कि अभी तक मैं जो सिखा रहा था क्या ये गलत था, ये क्या ऐसा लिखा हुआ है.
Oh, thankfully we're totally united on the great truths concerning the person of Christ and salvation and all these great important things.
लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो कि कई मूल सत्य हमारे उद्धार के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व के बारे में, इन सारे बातों में हम सब में एक एकता है.
But with different teachers this week and so many different brethren present,
और एक सप्ताह में कई शिक्षक हैं यहां पर और कई विभिन्न भाई लोग यहां पर उपस्थित हैं.
It is unbelievable to expect that we won't have differences of opinion about things.
तो अगर मैं ऐसा कहूं कि विचारों में विवाद ना उठे तो मैं जो कहूंगा उसमें जरूर गलती होगी, क्योंकि ये जरूर उठने वाला है.
So you see what I've been trying to do there is to show how scripture measured against scripture will be its own interpreter.
इसलिए हम इन बातों को देखेंगे कि वचन के विचार को वचन के शब्दों के साथ तुलना करके उसके अर्थ को समझने की हम कोशिश करेंगे.
So if God began a kingdom program in Genesis 1,
अगर उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में परमेश्वर ने एक राज्य की स्थापना की है,
we find as we read through the book of Genesis and we come to the end of chapter 11,
तो अगर हम पढ़ते हुए उत्पत्ति के पुस्तक उसके 11वें अध्याय के अंत में जब आते हैं,
that God has been dealing with men on earth and no distinction between them.
और हम देखते हैं कि परमेश्वर लोगों के साथ व्यवहार कर रहा था और उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव उसने नहीं रखा.
Mankind in general.
सारे मानव जाति को मूल रूप से अगर देखे.
And we might be surprised to learn if we didn't know before that when we come to the end of Genesis chapter 11,
और हमें बड़ा आश्चर्य होगा अगर हमने पहले अगर सुना नहीं है, सीखा नहीं है कि उत्पत्ति के पुस्तक उसके 11वें अध्याय के अंतिम भाग में जब हम आते हैं,
जस्ट ओवर हाफ ऑफ ऑल ओल्ड टेस्टामेंट हिस्ट्री हैज टेकन प्लेस,
हम पाते हैं कि पुराने नियम का आधा इतिहास वहां पूरा हो चुका है.
ऑन द टाइम लाइन ऑफ हिस्ट्री,
इतिहास के समय रेखा को अगर हम देखेंगे,
फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन टू द क्रॉस,
अदन के बाग से क्रूस तक,
ऑन दैट टाइमलाइन,
उस समय रेखा में,
व्हेन यू रीड वर्स 1 ऑफ जेनेसिस 12,
जब आप उत्पत्ति के 12वें अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं,
यू आर नियर टू कैल्वरी देन यू आर टू द गार्डन ऑफ ईडन,
आप अदन के बगीचे से भी करीब कालवरी के क्रूस के पास हैं.
God takes 11 chapters of our Bible to tell us about 2,000 years of Earth's history.
उन 11 अध्याय में हमारे पृथ्वी के 2,000 बरस का इतिहास लिखा हुआ है.
He's dealing with those who will come to be known as Gentiles.
वो उन लोगों के बारे में बता रहा है जो अन्य जाति कर संबोधित किए जाएंगे.
In chapter 12 and verse 1, he begins a new work.
और 12वें अध्याय उसके पहले पद में उत्पत्ति के 12वें अध्याय उसके पहले पद में एक नए शब्द की शुरुआत वो करता है.
He calls Abraham out of the Ur of the Chaldees.
उसने अब्राहम को कल्दियों के देश से बुलाकर लाता है.
And he promises that from Abraham he's going to bring forth a nation.
और अब्राहम के द्वारा वो ये वादा करता है एक बड़ी जाति को वो बनाएगा.
What's happened?
क्या हुआ?
The law of the house has changed.
घर का नियम व्यवस्था बदल रहा है.
The dispensation has changed.
युगों का परिवर्तन को देखिए.
And God is now dealing in a different way from the way he dealt before.
अभी तक परमेश्वर लोगों के साथ जैसा व्यवहार कर रहा था उससे कुछ अलग रूप से भी व्यवहार को हम पाते
हैं. He hasn't changed his mind.
उसने अपने मन के विचारों को बदला नहीं है.
He's beginning a new phase of things.
वो कार्यों के एक नए आरंभ को दिखा रहा है.
And so he brings out the nation of Israel.
और हम देखते हैं वहां पर इसराइल का उदय को हम पाते हैं.
And ultimately presents them with their Messiah, his own beloved son.
और उसके बाद उनके द्वारा उसने उनके मसीहा को दिखाया है अपना प्रिय पुत्र.
And they crucified him.
और उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया.
So God put the nation of Israel to one side.
इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रजा इसराइल को एक किनारे कर दिया.
And in Acts chapter 2,
और प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में
he started another work.
उसने एक नए की शुरुआत की.
A change of dispensation.
युगों का अंतर को देखिए व्यवस्था का बदलना.
And he's now beginning a work with the church in Acts chapter 2.
और प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय से हम पाते हैं कलीसिया के साथ अब वो काम शुरू कर रहा है.
The work that he began on earth last, his work with the church, is the one he's going to finish first.
और पृथ्वी के आगमन के से उसने अपनी कलीसिया के जो काम को शुरुआत किया था उसको वो सबसे पहले अंत करेगा.
The work he began in Genesis 12, he's going to finish next.
और उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में जिस काम को उसने शुरू किया उसको वो इसके बाद शुरू करेगा.
And then his dealings with the Gentiles at the beginning of the Bible will be the final thing that he brings to a culmination at the end of the Bible.
अन्य जातियों के साथ उसने जो व्यवहार को शुरू किया था उत्पत्ति के उसके पहले अध्याय से 11वें अध्याय तक अंत में उसको उसकी समाप्ति करेंगे.
I once brought home from Eastern Europe one of these little sets of wooden dolls. You've maybe seen them.
Eastern Europe से मुझे लकड़ी के गुड़िये मिले थे.
You take the doll in half.
आप उस गुड़ियों को आधा कर दीजिए.
There's another one inside.
उसके अंदर एक और गुड़िया है.
Looks like the first one, but it's smaller.
वो पहले गुड़िया के जैसे दिखता है लेकिन वो उससे छोटा है.
You take that in half, there's another one inside.
आप उस ऊपरी भाग को फिर उठाइए उसके अंदर एक और गुड़िया.
Just like the parts of an onion, one inside the other.
जैसे जो कांदा है उसके जो विभिन्न भाग ऐसा.
That's how God is working.
ऐसे ही परमेश्वर कार्य कर रहा
है. The church is embedded within his program for Israel.
जो कलीसिया की जो बातें हैं वो इसराइल के साथ उसके जो कार्यक्रम उसके अंदर है.
And his program for Israel is embedded within his program for the Gentiles.
और इसराइल के साथ जो उसके कार्य हो रहे हैं वो अन्य जातियों के बीच में उसका जो काम है उसके अंदर वो छिपा हुआ है.
And the whole thing as far as this earth is concerned is that it forms the kingdom of God. It forms the kingdom of God.
और इस पृथ्वी के संबंध में अगर हम देखें तो ये परमेश्वर के राज्य को दिखा रहा है.
The kingdom that began in Genesis 1,
उत्पत्ति के पहले पुस्तक में जो राज्य की स्थापना हुई,
is going to be brought to glorious fruition in the millennial reign of Christ.
और जब प्रभु यीशु मसीह का हजार वर्ष का राज्य होगा तब उसके उसके संपूर्ण महिमा को हम पाएंगे.
And God is bringing each of these programs to an orderly conclusion.
और परमेश्वर शुरू किए हुए सारे कार्यक्रमों को धीरे धीरे उसके अंत की ओर ले आ रहा है.
Each of the programs finishes with a resurrection.
और हर कार्यक्रम परमेश्वर की ये सारी योजनाएं पुनरुत्थान के साथ शुरू समाप्त होती है.
The program for the church on earth,
और कलीसिया के के लिए जो योजना है पृथ्वी पर,
finishes with the rapture and the selective resurrection of the dead in Christ.
और वो जो जीवित हैं उनके जी उठने के और जो मरे हुए उनके जी उठने के साथ समाप्त होता
है. God takes up his dealings with Israel again.
फिर उसके बाद परमेश्वर इसराइल के साथ काम करने जा
रहा है. Brings them to repentance through the tribulation.
और उनको उस पीड़ा के दौर से गुजार कर वो पश्चाताप करते हैं.
Represents their Messiah to them.
और उनके मसीहा को उनके सामने फिर परमेश्वर पेश करते हैं.
They receive him.
और वो अपने मसीहा को स्वीकार करेंगे.
There is a further selective resurrection from the dead, the Old Testament saints.
और जो फिर हम देखते हैं एक पुनरुत्थान को वहां पाते हैं.
Through the restoration of Israel, the Gentile nations are brought into blessing.
और इस प्रकार जब इस्राएल परमेश्वर के साथ मेल कर लेता है तो अन्य जातियों के राज्यों को फिर वो मेल में ले आता है.
एंड एट द एंड ऑफ दैट वर्क,
और जब वो काम भी पूरा हो जाएगा,
there will be a final resurrection.
एक अंतिम पुनरुत्थान होगा.
Isn't God orderly?
क्या परमेश्वर ने सारी बातों को क्रम में नहीं किया है?
You have a nice glimpse of it. I'll finish with this. A nice glimpse of this in John chapter 12.
इसका एक सुंदर दृश्य को हम यूहन्ना उसके 12वें अध्याय में पाते हैं.
John 12 is the closing chapter of the public ministry of the Lord Jesus in that gospel.
यूहन्ना 12वें अध्याय में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो सामूहिक सेवकाई है उसके अंतिम क्षणों को हम वहां पर पाते हैं.
He has been rejected by the nation.
और इसराइल ने उसको त्याग दिया, यहूदियों ने उसे त्याग दिया.
He has nothing more to say to them.
अब उनके पास उनको कहने के लिए कुछ भी नहीं.
You know how the gospel begins.
आपको मालूम है कि सुसमाचार का आरंभ कैसे.
In the beginning was the word.
आदि में वचन था.
Now you look at the end of John chapter 12.
और 12वें अध्याय के अंतिम भाग में आइए.
So I speak. That's how the verse finishes in English. So I speak. The last verse of John 12.
John. हम ऐसा पढ़ते हैं, वैसे ही बोलता हूं.
See what's happened? The word of chapter 1 has come into the world and the word has spoken.
अब देखिए, यूहन्ना के पहले अध्याय पहले पद में जो वचन के बारे में हम सुनते हैं वो पृथ्वी पर आया और देखिए वो वचन बोल रहा है.
And he's been rejected.
और हम जानते हैं उसका तिरस्कार किया गया.
And he tells the nation, you haven't just rejected me, you've rejected the one that sent me.
और उसने यहूदियों से कहा कि तुमने ना केवल मेरा तिरस्कार किया लेकिन उसका भी तिरस्कार किया जिसने मुझे भेजा.
So the Lord's public ministry in John 12 comes to an end.
इसलिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सामूहिक सेवकाई यहां पर 12वें अध्याय में समाप्त हो जाता
है. The chapter begins there at Bethany.
और अध्याय उसके बाद हम उस अध्याय में बेथनी को से आरंभ होते हुए देखते हैं.
In a scene of rejection, there are those who love the Lord for himself.
प्रभु यीशु मसीह के तिरस्कार के बीच में प्रभु को पूर्ण रूप से प्रेम करने वाले लोग भी थे.
And they have prepared him a supper.
और उन्होंने उसके लिए एक भोज की तैयारी की है.
Mark indicates to us that the house they were in was the home of Simon the leper.
मरकुस हमें बताता है कि जिस घर में वो लोग इकट्ठा हुए थे वो कोढ़ी सिमोन का घर था.
आई थिंक इट इज फेयर टू अस्यूम दैट साइमन वुड हैव बीन देयर.
और मैं विश्वास करता हूं कि सिमोन वहां निश्चित रूप से रहा है.
एंड इक्वली फेयर टू अस्यूम दैट ही वाज नो लॉन्गर अ लेपर.
और ये भी हम विश्वास कर सकते हैं कि वो अब कोढ़ी नहीं है.
And Lazarus was there, we know that.
हम जानते हैं लाजरस भी वहां था.
सो साइमन इज अ पिक्चर ऑफ द लिविंग हु हैव बीन चेंज्ड.
शिमोन जो है उनका चित्र है जो जीवित हैं, जो परिवर्तित हो जाएंगे.
And Lazarus is representative of those who have died and been raised.
और लाजरस उनका चित्र है जो मरे हुए हैं वो जो जीवित हो उठेंगे.
And this small company who love the Savior for himself, they sit and they prepare him a supper.
और ये जो छोटा सा झुंड जो अपने मसीहा से अपने उद्धारकर्ता से प्रेम करते थे उन्होंने उसके लिए एक भोज की तैयारी की है.
The living changed and the dead raised.
और जो जीवित हैं वो उठा लिए गए और मरे जी उठे हैं.
It's a little picture of the church in glory.
और ये कलीसिया जो उसकी महिमा में है उसका एक छोटा सा दृश्य है.
But then what else happens?
उसके बाद क्या हुआ?
Verse number 12 of John 12.
12 यूहन्ना 12 के 12 में देखिए.
There were those who came up to the feast. When they heard that Jesus was coming to Jerusalem, and they took these branches of palm trees, and there was a partial fulfillment of Zechariah 9 and verse 9.
और उसके 12वें पद में हम देखते हैं कि उस भीड़ को जिन्होंने यीशु मसीह को यरूशलेम में आकर के सुना तो खजूर की डालियां लेकर उसे भेंट करने आए. ये जकरिया 9 अध्याय के 9वें पद की भर पूर्ण होते हुए हम पाते हैं यहां पर.
So now, if we have a picture of the fulfillment of God's purpose for the church, we've got another one, a picture of God's purpose for Israel, that one day they will strew their palms and cry Hosanna to the King.
12वें अध्याय में अगर हम परमेश्वर कलीसिया के महिमा को या परमेश्वर के कलीसिया के बारे में योजना को पूर्ण होते हुए देखते हैं तो आगे हम पढ़ते हैं इसराइल के बारे में परमेश्वर की योजना को पूरा होते देखते हैं कि वो लोग उसको होशन्ना के साथ डालियों के साथ उसकी जय जयकार करेंगे जब उसे देखेंगे.
But in verse 20,
20वें पद को देखिए.
There were certain Greeks among them that came up to worship at the feast.
यहाँ पर कुछ यूनानी आए थे जो आराधना के लिए मंदिर में आए थे.
They said, "Sirs, we would see Jesus."
उन्होंने कहा कि सर हम उन्होंने फिलिपुस से कहा महोदय हम यीशु को देखना चाहते हैं.
The church,
कलीसिया,
the Jew,
यहूदी
एंड द जेंटाइल,
अब देखिए अन्य जाति,
ऑल ब्रॉट इनटू ब्लेसिंग,
सब क्रम में प्रभु के पास.
व्हाट्स द बेसिस ऑफ इट,
इसका आधार क्या है?
The chapter closes with the Lord saying, "Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone."
यहां पर हम पढ़ते हैं कि इसके अंत में पढ़ते हैं कि जब तक गेहूं का दाना बीज जमीन पर गिरकर पूर्ण रूप से नष्ट ना हो जाए.
Whether it's God's purpose for the Jew, the Gentile, or the Church of God,
ये परमेश्वर का यहूदियों कलीसिया के लिए, यहूदियों के लिए, अन्य जातियों के लिए परमेश्वर का जो भी उद्देश्य हो.
And that's how Paul speaks of them in 1 Corinthians 10.
और इसी बात को प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय में कहता है.
गिव नन ऑफेंस, गिव नन ऑफेंस.
हाँ, किसी
नेक्स्ट टू लास्ट वर्स ऑफ 1 कुरिन्थियंस 10. डोंट गिव ऑफेंस टू एनी.
हाँ, ना किसी के लिए ठोकर का कारण बनना.
नाइदर टू द ज्यू,
ना यहूदियों के लिए.
नॉट टू द जेंटाइल,
ना यूनानियों के लिए.
नॉट टू द चर्च ऑफ गॉड,
ना परमेश्वर की कलीसिया.
दैट्स द थ्री फोल्ड डिवीजन ऑफ मैनकाइंड एज़ फार एज़ गॉड्स किंगडम इज़ कंसर्न्ड.
परमेश्वर के राज्य के संबंध में इस प्रकार मानव को तीन भागों में बांटा गया.
दैट्स व्हाई यू हैव द हिडन ट्रेजर,
इसलिए आपके लिए हुए छुपे हुए वो बहुमूल्य पत्थर.
एंड द पर्ल,
और वो कीमती पर्ल है.
एंड द ड्रैगनेट,
और जाल है.
थैंक यू. Those three things, the last three parables of the kingdom in Matthew 13.
मत्ती 13 के तीन उदाहरण हम वहां पर पैराबल हम देखते हैं.
The Jew,
यहूदी.
The church,
कलीसिया.
The Gentile,
यूनानी.
Now, if you take things of prophecy that apply to the Jew,
अगर आप भविष्यवाणी की उन सत्यों को लेंगे जो यहूदियों के लिए है,
and you try and make them fit the church,
अगर आप उन सत्यों को लेकर कलीसिया के लिए निकालेंगे,
you have a big problem.
तो आप बहुत समस्या में फंस जाएंगे.
If you take things of the church and try and make them fit Israel, you'll have a big problem.
अगर आप कलीसिया के बारे में लिखे भविष्यवाणियों को इज़राइल के संबंध में जोड़ेंगे तो आप समस्या में फंस जाएंगे.
The dispensational framework to understanding prophecy is to see that God has a purpose for the Jew and for the church and for the Gentile.
परमेश्वर ने इन युगों के अंतर को इसलिए रखा है ताकि कलीसिया और यहूदी और अन्य जातियों के लिए परमेश्वर की जो भविष्यवाणियां हैं वो उस क्रम में पूरा हो.
In my experience, the vast majority of misunderstanding,
मेरे विचारों से हमारे बीच में जो विचारों को समझने में जो समस्याएं आती है,
of prophetic things,
भविष्यवाणी के विषयों में,
comes from a failure to distinguish between these three programs that God has.
ये इसलिए होता है कि हम इन तीन भागों को रखकर इन सत्यों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं.
And so that's one thing, as you're studying prophecy, be constantly asking yourself, who is this speaking about?
इसलिए जब भी हम भविष्यवाणी की बातों को पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में तुरंत ये विचार आना चाहिए कि ये इन तीनों में से किसके बारे में कहा जा रहा है.
Which of God's programs does this involve?
इसमें से परमेश्वर की कौन सी योजना पूरी हो रही है?
There are many people in Eastern Europe, for example.
पूर्वी यूरोप में कई ऐसे लोग थे.
They have no assurance of salvation.
उनको उद्धार के बारे में कोई निश्चयता नहीं है.
Why?
क्यों?
Because they look at the scripture in Matthew.
क्योंकि वो मत्ती रचित सुसमाचार में वचन को देखना चाहते
हैं. That if they don't endure to the end, they won't be saved.
तो वहां से लिखा कि अंत तक अगर वो धीरज ना रखेंगे तो वो उद्धार को नहीं पाएंगे.
And they're taking a scripture that applies to the Jew.
और वो यहूदियों के संबंध में लिखे गए एक भाग को लेते हैं.
And they're applying it to the church.
और वो कलीसिया के साथ उसको जोड़ रहे हैं.
And it is ruining their faith.
और अपने विश्वास में वो पीछे चले गए हैं.
God help us to interpret the word of God correctly.
परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जैसा कहा गया है इस क्रम के आधार पर परमेश्वर की वचन की व्याख्या हम करें.
Using these principles Brother George has been speaking about.
और परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए जिन सिद्धांतों को रखा है जिसको उसने कहा.
Wherever possible, going back to the words that the Holy Spirit teaches.
और वापस जाएं और परमेश्वर की आत्मा ने उन बातों को किन शब्दों में किन विचारों में व्यक्त किया उसको समझें.
Letting him be our teacher.
कि हम अवसर दें कि पवित्र आत्मा हमारी शिक्षक बन जाए.
And no matter how we cherish a particular idea,
और ऐसा क्यों ना हो कि हमारे साथ ये कोई विचार शायद बहुत महत्वपूर्ण क्यों ना हो,
if it disagrees with some other scripture,
लेकिन अगर वो पवित्र शास्त्र के किसी भी भाग से वो कोई समन्वय नहीं रखता,
we haven't got it right,
तो हम उसको सही नहीं कह सकते.
The spirit of prophecy,
जो आत्मा की जो भविष्यवाणी की जो आत्मा है,
is the testimony of Jesus.
वो ईशु की गवाही है.
Who is this book about?
ये पुस्तक किसके बारे में है?
Beginning at Moses, and in all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself.
मूसा से शुरू करके भविष्यवाणियों में उसने अपने बारे में सारी बातों को उन्हें समझाया.
The Lord bless his word.
परमेश्वर इन वचनों को आशीष करे.
Thank you, brother. Thank you.